दूसरा अध्याय वैदिक साहित्य। पहला, वैदिक संहिताएं। यद्यपि मूल या वैदिक संहिताएं केवल चार हैं, पर वैदिक साहित्य अत्यंत विशाल है। वेदों के आधार पर या उनके अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए या वैदिक मंत्रों का विनियोग करने के लिए जो अनेक विध ग्रंथ लिखे गए, उनका समावेश भी वैदिक साहित्य में किया जाता है। इस प्रकार वैदिक साहित्य को प्रधानतया निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, वैदिक संहिताएं। दूसरा, ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा, आरण्यक। चौथा, उपनिषद। और पांचवा, वेदांग। वैदिक संहिताएं आर्य जाति का सबसे प्राचीन साहित्य वेद का ग्रंथ है। ज्ञान। आर्य जाति का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद मुख्यतया पद्य में है, यद्यपि उनमें गद्य भाग भी विद्यमान है। वैदिक पद्य को ऋग या ऋचा कहते हैं। वैदिक गद्य को यजुस कहा जाता है। और वेदों में जो गीतात्मक छंद रूप पद हैं, उन्हें साम कहते हैं। ऋचाओं व सामों के एक समूह का नाम सुक्त होता है, जिसका अर्थ है उत्कृष्ट, उक्ति या सुभाषित। वेदों में इस प्रकार के हजारों सुक्त विद्यमान हैं। प्राचीन समय में वेदों को त्रयी भी कहते थे, ऋचा, यजुस और साम। इन तीन प्रकार के पदों में होने के कारण ही वेद की त्रयी संज्ञा भी थी। पर वैदिक मंत्रों का संकलन जिस रूप में आजकल उपलब्ध होता है, उसे संहिता कहते हैं। विविध ऋषि वंशों में जो मंत्र श्रुति द्वारा चले आते थे, बाद में उनका संकलन व संग्रह किया गया। पहले वेद मंत्रों को लेखबद्ध करने की परिपाटी शायद नहीं थी। गुरु शिष्य परंपरा व पिता पुत्र परंपरा द्वारा ये मंत्र ऋषि वंशों में स्थिर रहते थे, और श्रुति द्वारा शिष्य गुरु से या पुत्र पिता से उन्हें जानता था। इसी कारण उन्हें श्रुति भी कहा जाता था। विविध ऋषि वंशों में जो विविध सूक्त श्रुति द्वारा चले आते थे, धीरे धीरे बाद में उनको संकलित किया जाने लगा। इस कार्य का प्रधान श्रेय मुनि वेद व्यास को है। ये महाभारत युद्ध के समकालीन थे और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली विद्वान थे। इनका व्यक्तिक नाम कृष्ण द्वैपायन था, पर इन्हें वेद व्यास इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने वेदों का संकलन व वर्गीकरण किया था। वेद व्यास ने वैदिक सूतों का संहिता रूप में संग्रह किया और उनके द्वारा संकलित वैदिक संहिताएं चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार वैदिक संहिताओं के अतिरिक्त कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने सूतों, चारणों व मागधों में चली आती हुई राजवंशों की अनुश्रुति का भी संग्रह किया। उनके ये संग्रह पुराण कहे जाते हैं। वैदिक संहिताओं के जिस प्रकार ऋषि वंशों की श्रुति संग्रहित है, वैसे ही पुराणों में आर्य राजवंश के साथ संबंध रखने वाली अनुश्रुति संकलित है। वेद व्यास को 18वें पुराणों का कर्ता कहा गया है, पर वस्तुतः वे पुराणों के कर्ता न होकर संकलयिता थे। राजवंशों के प्रतापी राजाओं के वीर कृत्यों का आख्यान उस युग के सूतों व चारणों द्वारा किया जाता था। इन सूत वंशों में राजवंशों के आख्यान व गाथाएं वैसे ही पिता पुत्र परंपरा से चली आती थी, जैसे कि ऋषि वंशों में सूक्तों की श्रुति। वेद व्यास ने इन सब का संग्रह किया। इसमें संदेह नहीं कि मुनि वेद व्यास अपने युग के सबसे बड़े विद्वान और संकलन करता थे। चार वेद। हम इस स्थिति में हैं कि चारों वैदिक संहिताओं का संक्षेप के साथ परिचय दे सकें। ऋग वेद में कुल मिलाकर 1016 सूक्त हैं। यदि 1017 सूक्त हैं, यदि 11 बाल खिल सूक्तों को भी इनमें अंतर्गत कर लिया जाए, तो ऋग्वेदों के कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। संभवतः ये बाल खित सूक्त परिशिष्ट रूप में हैं और बाद में जुड़े गए हैं। यही कारण है कि अनेक विद्वान इन्हें ऋग्वेद का अंग नहीं मानते और इस वेद की कुल सूक्त संख्या 1017 समझते हैं। ये 1017 या 1028 सूक्त 10 मंडलों में विभक्त हैं। वेद के प्रत्येक सूक्त व ऋचा मंत्र के साथ उसके ऋषि और देवता का नाम दिया गया है। ऋषि का अर्थ मंत्र दृष्टा या मंत्र का दर्शन करने वाला। जो लोग वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं उनके अनुसार वेदों का निर्माण तो ईश्वर द्वारा हुआ था, पर इस वैदिक ज्ञान की अभिव्यक्ति करने वाले ये ऋषि थे। पर आधुनिक विद्वान वैदिक ऋषि का अभिप्राय यह समझते हैं कि ये ऋषि मंत्रों के निर्माता थे। वैदिक देवताओं का अभिप्राय उस देवता से है जिसकी उस मंत्र में स्तुति की गई हो या जिसके संबंध में मंत्र में प्रतिपादन किया गया हो। ऋग्वेद के ऋषियों में सर्वप्रधान गुत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ हैं। इन 6 ऋषियों व इनके वंशजों ने ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और सातवें मंडलों का दर्शन या निर्माण किया था। 8वें मंडल के ऋषिकण्व और अंगिरिस वंशों के हैं। प्रथम मण्डल के 50 सूक्त भी कण्व वंश के ऋषियों द्वारा निर्मित हुए। अन्य मंडलों व प्रथम मंडल के अन्य सूक्तों का निर्माण विविध ऋषियों द्वारा हुआ। इन जिन सबके नाम इन सूक्तों के साथ में मिलते हैं, इन ऋषियों में वैवस्वत मनु, शिवि, ओसिनर, प्रत्रदन, मधुछंदा और देवापी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेद के ऋषियों में कतिपय स्त्रियां भी हैं जिनमें लोपामुद्रा प्रमुख है। लोपामुद्रा राजकुल में उत्पन्न हुई थी। वह विदर्भ राज की कन्या थी और अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वेद के सूक्तों का विभाग मंडलों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार से भी किया गया है। इस विभाग के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में अनेक वर्ग हैं जिनकी कुल संख्या 2024 है। ऋग्वेद के मंत्रों संख्या में 10,552 है। एक सूक्त या एक वर्ग में कितने कितने मंत्र हो यह निश्चित नहीं है। सूक्त एवं वर्ग छोटे बड़े हैं और उनके अंतर्गत मंत्रों की संख्या भी कम अधिक है। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप इस समय मिलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं जिसकी 2 शाखाएं उपलब्ध है, कान्व और माध्यनदीय। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रीय संहिता और तैत्रीय संहिता। विविध ऋषि वंशों व संप्रदायों में श्रुति द्वारा चले आने के कारण मूल वेद मंत्रों में पाठ भेद का हो जाना असंभव नहीं था। संभवतः इसी कारण से यजुर्वेद की ये विविध शाखाएं बनी। इन शाखाओं में अनेक स्थानों पर मंत्रों में पाठ भेद पाया जाता है। इनमें यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत से विद्वान उसे ही असली यजुर्वेद मानते हैं। यह 40 अध्यायों से विभक्त है। इनमें उन मंत्रों का पृथक पृथक रूप से संग्रह किया गया है जो विविध यागिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त किए जाते थे। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है जिसका संबंध यागिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन के साथ है। सामवेद की 3 शाखाएं इस समय मिलती है, कौथुम शाखा, रामायणीय शाखा और जैमिनीय शाखा। इनका आधार भी पाठ भेद है। संभवतः पहले सामवेद की अन्य भी बहुत सी शाखाएं विद्यमान थी। पुराणों में तो सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है। वर्तमान समय में उपलब्ध शाखाओं और कौतुब शाखा अधिक प्रचलित व प्रमाणित है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। दोनों भागों को मिलाकर मंत्र संख्या 1869 हैं। मिलाकर मंत्र संख्या 1869 हैं। इसमें अनेक मंत्र ऐसे भी हैं जो एक से अधिक बार आए हैं। यदि उन्हें अलग कर दिया जाए तो सामवेद के मंत्रों की कुल संख्या 1549 रह जाती है। इनमें से भी 1474 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार सामवेद के अपने मंत्रों की संख्या केवल 75 रह जाती है। संभवतः सामवेद में ऐसी ऋचाओं का पृथक रूप से संग्रह कर दिया गया है जिन्हें संगीत के रूप में गाया जा सकता है। साम रूप में ये ऋचाएं वैदिक ऋषियों द्वारा संगीत के लिए प्रयुक्त की जाती थी। अथर्ववेद की दो शाखाएं इस समय मिलती है, सौनक और पिपलाद। इनमें सौनक शाखा अधिक प्रसिद्ध है, उसे ही प्रमाणिक रूप में स्वीकार किया जाता है। अथर्ववेद में कुल मिलाकर 20 अध्याय और 731 सूक्त हैं। सूक्तों के मंत्रों को यदि गिना जाए तो उनकी संख्या 6000 के लगभग पहुंच जाती है। इनमें भी बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में पाए जाते हैं। वेदों की विविध शाखाएं डैश हमने ऊपर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की कतिपय शाखाओं का उल्लेख किया, पर प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वेदों की अन्य भी बहुत सी शाखाएं थी जो वर्तमान समय में अविकल रूप से उपलब्ध नहीं होती। पतंजलि कृत महाभाष्य में लिखा है कि यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, सामवेद की शाखाओं की संख्या 1000 है, ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। पुराण आदि अन्य प्राचीन साहित्य में भी वेदों की विविध शाखाओं के उल्लेख विद्यमान हैं। दिव्यावधान सदृश बौद्ध ग्रंथ में भी वेदों की अनेक शाखाएं गिनाई गई हैं और ऋग्वेद की 20 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। विविध ऋषि कुलों में श्रुति द्वारा वेदों का अध्ययन चला आता था, अतः समयांतर में वेद मंत्रों में पाठ भेद हो जाना अस्वाभाविक नहीं था। वेदों की जो बहुत सी शाखाएं हो गई उसका कारण संभवतः यही था। महाभाष्य में ऋग्वेद की जिन 21 शाखाओं का उल्लेख है उनमें 5 शाखाएं प्रधान हैं, साकल, बासकल, अश्वलायन, सांख्यायन और मांडुके। इन 5 में भी साकल शाखा मुख्य है। ऋग्वेद नाम से जिस वैदिक संहिता का वर्तमान समय में अध्ययन किया जाता है वह साकल शाखा का ही है। इसका साकल शाखा नाम आचार्य देवमित्र साकल्य के नाम से पड़ा, जिनके शिष्य साकल कहलाते थे। साकल की शिष्य परंपरा में श्रुति द्वारा ऋग्वेद का जो रूप चला आता था वही साकल कहता था और उसे ही आजकल इस वैदिक संहिता का प्रमाणिक पाठ माना जाता है। ऋग्वेद की साकल शाखा में सूक्तों की कुल संख्या 1017 है, पर बासकल शाखा के ऋग्वेद में 8 सूक्त अधिक हैं। इनमें से एक संज्ञान सूक्त है जिसकी अंतिम ऋचा तच्छम योरा ब्रिनी महे है। यह संज्ञान सूक्त साकल शाखा में नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त बाल्यखिल सूक्तों में भी 7 सूक्तों की बासकल शाखा के ऋग्वेद में सम्मिलित किया गया है। बाल्यखिल सूक्त संख्या में 11 हैं, जिनमें से पहले 7 को बासकल शाखा के ऋग्वेद के 8वें मंडल में स्थान प्राप्त है। ऋग्वेद की साकल और बासकल शाखाओं में मुख्य भेद यही है। यद्यपि प्रथम मंडल के मंत्रों के क्रम में भी इन दोनों शाखाओं में भेद पाया जाता है। अश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकीय शाखाओं के ऋग्वेद वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है, पर उनके साथ संबंध रखने वाले कतिपय ऐसे ग्रंथ अवश्य मिलते हैं जिन्हें वैदिक साहित्य के अंतर्गत माना जाता है। अश्वलायन शाखा के गृह और स्रोत सूत्र उपलब्ध हैं और सांख्यायन शाखा के ब्राह्मण, आरण्यक, स्रोत सूत्र और गृह सूत्र। इनके अनुशीलन से यह भी ज्ञात होता है कि किसी प्राचीन समय में इन शाखाओं की ऋग्वैदिक संहिताओं की सत्ता भी थी। मांडुक्य शाखा के ऋग्वेद और ब्राह्मण इस समय उपलब्ध नहीं है। यजुर्वेद के दो प्रधान रूपों का उल्लेख ऊपर दिया जा चुका है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इनमें मुख्य भेद यह है कि कृष्ण यजुर्वेद में मूल मंत्रों के साथ साथ उस ब्राह्मण भाग का भी संकलन दिया गया। मूल मंत्रों के विनियोग को स्पष्ट करने के लिए जिसकी रचना की गई है, इसके विपरीत शुक्ल यजुर्वेद में केवल मूल मंत्र ही संकलित है, ब्राह्मण भाग को उसमें समाविष्ट नहीं किया गया। इन दोनों प्रकार के यजुर्वेदों की अनेक शाखाएं वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखा वाजसनेयी है और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय। वाजसनेय शुक्ल यजुर्वेद की दो मुख्य शाखाएं हैं, कानव और माध्यनिंदनीय। कानव शाखा के यजुर्वेद में 40 अध्याय और 2086 मंत्र हैं। माध्यनिंदनीय शाखा के यजुर्वेद के अध्यायों की संख्या तो 40 ही है, पर मंत्र 1975 हैं। शुक्ल यजुर्वेद की अन्य शाखाओं में जावाल, बौद्धे, सापे, कौपाल, कपोल, पौंडर्बस्त, बैजबाप, पाराशर और कात्यायन मुख्य है। इनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में हुआ है और इनके साथ संबंध रखने वाले वैदिक साहित्य के कतिपय ग्रंथों के निर्देश भी उनमें विद्यमान है, पर इन शाखाओं के यजुर्वेद का कान्व व माध्यनिंदनीय यजुर्वेद से क्या भेद था, यह ज्ञात नहीं है। यजुर्वेद की जो 101 शाखाएं कही गई है, उनमें से 15 शुक्ल यजुर्वेद की है और 86 कृष्ण यजुर्वेद की। इन 86 शाखाओं में इस समय केवल 4 उपलब्ध हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रीय और तैत्रीय। पुराणों के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाओं के 3 भेद हैं, उद्दिच्च, मध्यदेशीय और प्राच्य। पतंजलि के महाभाष्य और काशिकावृत्त में भी ये 3 भेद परिलक्षित होते हैं। उत्तर भारत, मध्य देश तथा पूर्वी भारत में निवास करने वाले विविध ऋषि वंशों या कुलों में कृष्ण यजुर्वेद के जो पाठ भेद होते गए तथा मंत्रों से क्रम आदि में जो अंतर आता गया, उसी से इन विविध शाखाओं का विकास हुआ था। वर्तमान समय में उपलब्ध 4 शाखाओं में तैत्रीय शाखा के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्रोत सूत्र और गृह सूत्र भी विद्यमान हैं, जिसके कारण इसका महत्व बहुत अधिक माना जाता है। मैत्रीय तथा काठक शाखाओं के कृष्ण यजुर्वेदों में बहुत भेद नहीं है। कृषि प्राचीन समय में उनका प्रचार बहुत अधिक था, इसीलिए महाभाष्य में लिखा है कि गांव-गांव में काठक संहिता का पठन पाठन होता है, पर वर्तमान समय में इन शाखाओं के कृष्ण यजुर्वेदी का अधिक प्रचलन नहीं है। कपिष्ठल शाखा का कृष्ण यजुर्वेद वर्तमान समय में खंडित रूप में ही प्राप्त है। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार सामवेद की 1000 शाखाएं थी। दिव्यावदान में भी इस वेद की 1080 शाखाओं का उल्लेख विद्यमान है, पर वर्तमान समय में इन सब शाखाओं के नाम तक भी ज्ञात नहीं है। इनकी उपलब्धि का तो प्रश्न ही क्या है। सामवेद किस प्रकार 1000 या इससे भी अधिक शाखाओं में विभक्त हुआ, इस संबंध में पुराणों तथा महाभारत में यह लिखा है कि वेदों का संहिता रूप से संकलन करने वाले कृष्ण द्वैपायन व्यास का अन्यतम प्रधान शिष्य जैमिनी था, जिसे उन्होंने सामवेद की शिक्षा दी थी। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसकी संतान परंपरा में सुनवान और सुकर्मा हुए। इन सब ने अपने पिताओं से सामवेद की शिक्षा ग्रहण की। सुकर्मा द्वारा सामवेद का बहुत विस्तार किया गया और उन्होंने इसकी 1000 संहिताएं बनाई। सुकर्मा के 2 प्रधान शिष्य थे, हिरण्यनाभ कौशल्य और पौष्पी अंजयी आवनत्य। इन द्वारा साम का गायन करने वाले सामग आचार्यों की 2 परंपराओं का विकास हुआ, प्राच्य सामग और उद्दिच्य सामग्र। हिरण्याब और पौष्पेंजी की शिष्य परंपरा में सामवेद की विविध शाखाओं का पठन पाठन होता रहा और अनेक सुयोग आचार्य इनका प्रवचन करने में तत्पर रहे। प्राचीन साहित्य में इन समाग विद्वानों तथा उन द्वारा अध्ययन की जाने वाली संहिताओं के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं विद्यमान हैं, पर उनका यहाँ उल्लेख करना उपयोगी नहीं है। सामवेद की जो शाखाएं वर्तमान समय में उपलब्ध है वे कौथुम रामायणीय और जैमिनीय है, पर इनके अतिरिक्त सात्य मुग्रा नैग्या शार्दुला वार्षगण्या गौतमा भालबिन कालबिन सात्यायन रोक्निन कौप्या मासद्रव्य करद्विष सांडिल्या और तांडया सदृश कतिपय अन्य शाखाओं का उल्लेख प्राचीन साहित्य में आया है, यद्यपि वर्तमान समय में वे उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान समय में सामवेद की कौथुम शाखा सबसे अधिक प्रचलित है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ तांडेय महाब्राह्मण का संबंध इसी शाखा से है। छांदोग्य उपनिषद भी इसी के साथ संबंध रखती है। सामवेद की रामायणीय शाखा और कौथुम शाखा में विशेष भेद नहीं है, दोनों में मंत्र एक समान हैं, यद्यपि कतिपय शब्दों के उच्चारण के संबंध में इन शाखाओं में भेद की सत्ता है। महाभाष्य में लिखा है कि रामायणीय और सात्यमुग्र शाखाओं वाले एकार तथा ओकार का अर्ध मतलब ह्रस्व उच्चारण करते हैं और संध्य अक्षरों को भी ह्रस्व पढ़ते हैं। सामवेद की जैमिनीय शाखा की संहिता ब्राह्मण सौत्र सूत्र तथा गृह सूत्र सब उपलब्ध हैं। जैमिनीय सामवेद में मंत्रों की संख्या कौथुम सामवेद की तुलना में कुछ कम है। उसके पूर्वाचिक में 646 मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में 1041। इस प्रकार जैमिनीय सामवेद में कौथुम सामवेद की तुलना में मंत्र संख्या 182 कम है। इन शाखाओं के मंत्रों में अनेक स्थानों पर पाठ भेद भी पाया जाता है और जैमिनीय सामवेद में कुछ मंत्र ऐसे भी विद्यमान हैं जो कौथुम सामवेद में नहीं है। पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी जिनके नाम अथर्वण चरण व्यूह के अनुसार निम्नलिखित थे: पैपलादा मौदा सौनकिया जाजला देवदर्शा चारण विद्या सूत्रोदा जलदा और ब्रह्मदा। अन्य अनेक प्राचीन ग्रंथों में भी अथर्ववेद की 9 शाखाओं के नाम दिए गए हैं जो चरण व्यूह के नामों से कुछ भिन्न हैं। इन शाखाओं का विकास भी कृष्ण द्वैपायन व्यास की शिष्य परंपरा द्वारा हुआ था। पुराणों के अनुसार व्यास का एक मुख्य शिष्य सुमंतु था जिसके शिष्य पथ और देवदर्श थे पथ्य के 3 शिष्य हुए जाजली कुमुद और सौनक। देवदर्श के 4 शिष्य थे: मोद ब्रह्मबल पिपलाद और सौस्ककायनी तथा या सौलकायनी। इन्हीं शिष्यों द्वारा अथर्ववेद की विविध शाखाओं का विकास तथा प्रसार किया गया और विविध शाखाओं के जो नाम प्रसिद्ध हुए वे इस गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों के नाम के साथ संबंध थे। वर्तमान समय में जिसे अथर्ववेद के रूप में स्वीकार किया जाता है वह सौनक शाखा की संहिता है। इसमें 20 कांड 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इनमें से 20% के लगभग मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में भी विद्यमान हैं। अथर्ववेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ गोपत सौनक शाखा का ही ब्राह्मण है। पिपलाद शाखा का जो अथर्ववेद इस समय उपलब्ध है उसमें सौनकीय अथर्ववेद की तुलना में ब्राह्मण भाग अधिक है। साथ ही इन शाखाओं में अथर्ववेदों में अनेक पाठ भेदों की भी सत्ता है। अथर्ववेद की जिन अन्य 7 शाखाओं का ऊपर उल्लेख किया गया है उनकी संहिताएं इस समय उपलब्ध नहीं है। यद्यपि प्राचीन ग्रंथों में उनकी सत्ता के निर्देश अवश्य विद्यमान हैं। वैदिक संहिताओं की विविध शाखाओं का विकास जिन ऋषि मुनियों द्वारा या उनकी शिष्य परंपरा द्वारा किया गया, उनके संबंध में बहुत सी ज्ञातव्य बातें प्राचीन साहित्य से जानी जा सकती हैं। पुराणों और महाभारत आदि ग्रंथों में इनके विषय में अनेक कथानक दिए गए हैं और इनकी शिष्य परंपरा का वृत्तांत भी आंशिक रूप से उपलब्ध है। पिपलाद, शौनक, कण्व, गौतम, तांडिल्य, जाबाल आदि प्राचीन भारत के चिंतकों तथा धर्माचार्यों ने में विशिष्ट स्थान रखते थे और उन्हीं द्वारा वैदिक संहिताओं की विविध शाखाओं का विकास किया गया था। वैदिक ऋषि डैश वेदों में प्रत्येक सूक्त व मंत्र के साथ उसके ऋषि और देवताओं के नाम भी दिए गए हैं। कात्यायन मुनि द्वारा विरचित सर्वानुक्रमणी में भी वेद के साथ संबंध ऋषियों का विवरण दिया गया है। पाश्चात्य विद्वानों के मत में ये ऋषि वेद मंत्रों के कर्ता या रचयिता थे। जिस व्यक्ति ने जिस वेद मंत्र की रचना की, उसे उस मंत्र के कर्ता या ऋषि रूप में उल्लिखित कर दिया गया। संभवतः कात्यायन को भी यही मत अभीष्ट था। उन्होंने सर्वानुक्रमणी में लिखा है कि अस्यवाकम स ऋषि, जिसका जो वाक्य वचन है वही उसका ऋषि है। पर वेदों को मनुष्यकृत न मानकर ईश्वरीय ज्ञान प्रतिपादित करने वाले विद्वान यह मानते हैं कि वैदिक ऋषि वेद मंत्रों के रचयिता न होकर उनके दृष्टा थे। पर वेदों को मनुष्यकृत न मानकर ईश्वरीय ज्ञान प्रतिपादित करने वाले विद्वान यह मानते हैं कि वैदिक ऋषि वेद मंत्रों के रचयिता न होकर उनके दृष्टा थे। उन द्वारा मंत्रों के अर्थ का दर्शन किया गया था, जिसे कि उन्होंने मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रतिपादित भी किया था। निरुक्त के कर्ता यास्काचार्य को यही मत अभिप्रेत था। उन्होंने लिखा है, ऋषि दर्शनार्थ ऋषियो ही मंत्र दृष्टार, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है वे ही उनके ऋषि हैं, क्योंकि ऋषि शब्द ही दर्शन से बना है। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण में भी ऋषि के अर्थ को मंत्र दृष्टा के रूप में ही निरूपित किया गया है। कतिपय वेद मंत्र ऐसे भी हैं जिनमें एक से अधिक ऋषियों का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय और गोपथ ब्राह्मणों के अनुसार ऋग्वेद की संपात ऋचाओं का प्रथम ऋषि विश्वामित्र थे, पर कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में इनका ऋषि वामदेव लिखा गया है। इससे सूचित होता है कि संपात ऋचाओं के अभिप्राय को पहले विश्वामित्र द्वारा प्रकट किया गया और फिर वामदेव द्वारा। ये दोनों ऋषि इन ऋचाओं के कर्ता या रचयिता न होकर दृष्टा मात्र थे और दोनों ने अपने अपने ढंग से इनके अर्थ का दर्शन व प्रतिपादन किया था। ऋषि का अर्थ मंत्र दृष्टा है। सायनाचार्य को भी यही मत स्वीकार था। ऐत्रीय अरण्य का भाष करते हुए उन्होंने लिखा है कि वेद अपरुषय है, अतः उनका कोई कर्ता नहीं है। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर की कृपा से जिन ऋषियों ने मंत्र को ग्रहण किया, उन्हें ही मंत्र कृत कहा जाता है। न्याय सूत्र पर भाष लिखते हुए वात्स्यायन मुनि ने इसी मत को एक अन्य प्रकार से प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार जो आप्तया साक्षात कृत धर्मा व्यक्ति थे, वे वैदिक मंत्रों के अर्थों के दृष्टा एवं प्रवक्ता भी थे। वैदिक ऋषि आप्त थे, उन्हें सकल धर्म का साक्षात्कार था। उन्होंने वेद मंत्रों का दर्शन एवं प्रवचन किया। बौद्धायन धर्म सूत्र के मत में मंत्रों के अर्थ के ज्ञाता ही ऋषि कहलाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारत के बहुसंख्यक विचारक वैदिक ऋषियों को वेद मंत्रों का दृष्टा व प्रवक्ता ही मानते थे, कर्ता या रचयिता नहीं। वेदों के जो मंत्र संहिताओं में एक से अधिक स्थानों पर आए हैं उन सब का ऋषि एक ही नहीं लिखा गया है। इससे भी यह सूचित होता है कि वेद मंत्रों के अर्थ को स्पष्ट करने वाले एक से अधिक व्यक्ति थे। किसी मंत्र के दृष्टा व प्रवक्ता तो अनेक हो सकते हैं पर रचयिता तो एक ही हो सकता है। वैदिक संहिताओं के किन सूक्तों तथा मंत्रों के कर्ता या दृष्टा कौन से ऋषि थे यह बात सायणकृत सर्वानुक्रमणी से भली भांति ज्ञात है। इन ऋषियों के नाम प्राचीन संस्कृत साहित्य के अन्य ग्रंथों में भी पाए जाते हैं और इनके संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण सूचनाएं पुराणों तथा महाभारत में विद्यमान है। ये ऋषि प्रायः ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। जो विचारक वैदिक ऋषियों को वेद मंत्रों का कर्ता मानते हैं वे इन ऋषियों के समय के आधार पर वैदिक सूक्तों के निर्माण काल का भी निर्णय करने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के कतिपय मंत्रों के ऋषि भलंदन बातस्प्री और संकील हैं जो वैवस्वत मनु के अन्यतम पुत्र नाभिनिदिष्ट के वंशज थे। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार इनका जो काल निर्णय किया जाता है ऋग्वेद के मंत्रों का रचना काल भी वही माना जाना चाहिए। इसी प्रकार ऋग्वेद के कतिपय मंत्रों के ऋषि सोमक हैं जो पांचाल देश के राजा सहदेव के पुत्र थे। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार सहदेव और सोमक का जो काल हो उसी को इन मंत्रों की रचना का काल समय मानना होगा। पर यदि ऋषि का अभिप्राय मंत्र का कर्ता न मानकर दृष्टा माना जाए तो इस आधार पर वैदिक सूत्रों की रचना के काल का निर्धारण नहीं किया जा सकेगा। वैदिक ऋषियों को चाहे वेद मंत्रों का कर्ता माना जाए और चाहे दृष्टा, यह निर्विवाद है कि भारतीय इतिहास के वैदिक युग का अनुशीलन करने के लिए उनका बहुत महत्व है। ये ऋषि ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और इनके संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें प्राचीन साहित्य में सुरक्षित हैं। पुराणों के अनुसार जिन ऋषियों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया उनके 5 भेद थे, महर्षि, ऋषि, ऋषिक, ऋषि पुत्रक और श्रुतर्षि। चरक तंत्र सूत्र स्थान की व्याख्या में भट्टार हरिश्चंद्र ने 4 प्रकार के मुनियों का उल्लेख किया है, ऋषि, ऋषिक, ऋषि पुत्रक और महर्षि। सूत्रर्षि का परिगणन उसने नहीं किया। पुराणों में यद्यपि 5 वर्गों के ऋषियों का उल्लेख है पर विशद रूप में परिगणन केवल 3 प्रकार के ऋषियों का ही किया गया है, महर्षियों, ऋषियों और ऋषिकों का। यह विवरण उल्लेखनीय है क्योंकि इस द्वारा मंत्र दृष्टा ऋषियों की ऐतिहासिक परंपराओं का परिचय प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार महर्षि 10 थे, भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुल्लक, ऋतु, मन्नु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलस्त्य। इनको ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया है और ये स्वयमीश्वर या स्वयं प्रकाश थे। भृगु आदि 10 महर्षियों के पुत्र या शिष्य ऋषि वर्ग में परिगणित किए गए। ये संख्या में 13 थे और इनके नाम उष्णा, काव्य, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उत्तथ्य, वामदेव, अगस्त, औसीज, कर्दम, विश्रवा, शक्ति, बालखिल और पर्वत थे। इन सब ने तप और ज्ञान द्वारा ही ऋषि पद प्राप्त किया था। ऋषियों की शिष्य परंपरा में जो बहुत से नामी ज्ञानी या मुनि हुए उन्हें ऋषि पुत्र और ऋषक या ऋषिक कहा गया है। इनमें वत्सर, नन्हु, भरद्वाज, दीर्घतमा, बृहदक्तु, सर्द्वत, बाजश्रवा, सुवक्ति, वत्स्यास्व, पराशर, दधीच, संसप और वैश्रवण के नाम पुराणों में गिनाए गए हैं। पर ऋषियों की वंश परंपरा तथा शिष्य परंपरा से ऋषि पुत्रों व ऋषिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई और सर्वानुक्रमणी में जिन ऋषियों के नाम दिए गए हैं उनमें से बहुत से इन्हीं ऋषि पुत्रों एवं ऋषिकों के वर्गों के ही है। महर्षि वर्ग के 10 मुनियों के कुलों में जो जो मंत्र दृष्टा हुए उनका विवरण भी पुराणों में विद्यमान है। भृगुकुल के इन मंत्र दृष्टा ऋषियों की संख्या 19 बताई गई है। अंगिरा कुल के 33, अत्रि कुल के 63 और वशिष्ठ कुल के 7 मंत्र दृष्टाओं के नाम पुराणों में विद्यमान हैं। ऋषियों की शीर्ष परंपरा में जो मंत्र दृष्टा हुए उनके अनेक नाम भी पुराणों में दिए हुए हैं। इन सबको पृथक पृथक रूप में उल्लेखित करने का विशेष उपयोग नहीं है, पर इनमें मांददाता, ऋषभ, अम्बरीश, अजमीर, दीर्घतमा, कन्नव, वामदेव, बाजश्रवा, विश्वामित्र, धनंजय, अगस्त, वैवस्वत्व, मनु, पुरुरवा आदि ऐसे नाम हैं जिनका भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति में महत्वपूर्ण स्थान है और जिनसे यह प्रतिपादित किया जाता है कि वैदिक मंत्रों की रचना किस प्रकार विविध युगों व समयों में होती रही। वेदों के काल निर्धारण के लिए इनका बहुत उपयोग किया जाता है। ऋग वेद के विविध सूक्तों को जो विभिन्न कालों में निर्मित माना जाता है उसका आधार जहाँ भाषा का भेद है वहाँ साथ ही उनके ऋषियों के समय में दी में भी भेद की सत्ता है। पुराणों तथा महाभारत आदि में इन ऋषियों के संबंध में जो आख्यान व अनुश्रुति विद्यमान है उसके आधार पर ही इनके पूर्वा पर्य का निर्धारण किया जाता है और उसी के अनुसार विविध वैदिक सूक्तों की रचना का समय निश्चित किया जाता है। पर जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, वेदों को अपरुषेय मानने वाले विद्वान इस प्रकार के विवेचन को युक्तिसंगत नहीं समझते। दूसरा, ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक साहित्य में संहिताओं के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है जिसके अनेक अर्थ हैं। मंत्र और यज्ञ के लिए भी ब्रह्म शब्द प्रयुक्त होता है। जो ग्रंथ वैदिक मंत्रों की व्याख्या करे, उनके अभिप्राय को स्पष्ट करे और यज्ञों की विधि एवं अनुष्ठान को प्रस्तुत करे, उन्हीं के लिए ब्राह्मण संज्ञा प्रयुक्त की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में उस कर्मकांड का विशद रूप से वर्णन है जिसमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया जाता है। यागिक कर्मकांड के अतिरिक्त इनमें वेद मंत्रों के अभिप्राय को भी स्पष्ट किया गया है और साथ ही उनके विनियोग की विधि का भी वर्णन है। वैदिक साहित्य का यह भाग विविध यज्ञों के लिए वेद मंत्रों के प्रयोग के नियमों को प्रस्तुत करता है, उनके अभिप्राय को स्पष्ट करता है और इस प्रयोजन से परंपरागत आख्यानों एवं कथाओं को भी दृष्टांत रूप में उपस्थित करता है। ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन वैदिक संहिताओं को समझने के लिए अनिवार्य है। वस्तुतः इनकी रचना वेदों के अभिप्राय को स्पष्ट करने तथा वेद मंत्रों के विनियोग को जताने के लिए ही की गई थी। यही कारण है कि प्रत्येक वेद या उसकी शाखा का अपना अपना पृथक ब्राह्मण था। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या रूप ही है। इस तथ्य को सायणाचार्य ने भी स्वीकार किया है। तैत्तिरीय संहिता के भाष्य की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यान रूपत्वात् मंत्रा एवादो समामनाता। ब्राह्मणों का रूप मंत्रों के व्याख्यान का है, अतः आदि में मंत्र ही समानांत थे। मूल वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक भेद हैं। वेद मंत्र प्रायः वेद में पद में हैं, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। संस्कृत गद्य का अत्यंत प्राचीन रूप ब्राह्मण ग्रंथों में ही पाया जाता है। विषय की दृष्टि से भी इनमें भेद है। वैदिक मंत्रों में प्रायः देवताओं की स्तुति की गई है। इंद्र, मित्र, वरुण, सोम आदि जो एक ब्रह्म या परमात्मा के विविध रूप हैं और इस सर्वोच्च शक्ति या सत्ता के विभिन्न गुणों को प्रतिपादित करने के लिए देवताओं के रूप में जिनकी कल्पना की गई है, बहुसंख्यक वेद मंत्रों का विषय उनकी स्तुति ही है। यद्यपि मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के उच्चतम आदर्शों का भी वेद मंत्रों में निरूपण मिलता है, पर ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय विधि है। वह विधि जिसके अनुसार याज्ञिक कर्मकांड का अनुष्ठान किया जाता है। यज्ञ कब किए जाए, कैसे किए जाए, किन व्यक्तियों को यज्ञ का अधिकार है, यज्ञ के लिए किन साधनों व सामग्री की आवश्यकता है और विविध यज्ञों की क्या प्रक्रियाएं हैं, इन बातों का विवेचन एवं प्रतिपादन ही ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विषय है। साथ ही उनमें यह भी निरूपित किया गया है कि याज्ञिक कर्म कांड में किस मंत्र का कहाँ विनियोग किया जाए और इस मंत्र विनियोग का क्या प्रयोजन है। याज्ञिक कर्म कांड की जिस विधि का प्रतिपादन ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है उसकी युक्ति युक्तता भी उनमें प्रदर्शित की गई है और इसके लिए अनेक गाथाएं तथा आख्यान भी दिए गए हैं। प्रसंगवश ब्राह्मण साहित्य में ऐसी सामग्री भी आ गई है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। वेदों के समान ब्राह्मणों को ईश्वर कृत या अपरुषेय नहीं माना जाता, इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए उनका उपयोग करने में किसी को भी कठिनाई नहीं है। ऋग्वेद के ब्राह्मण, यह माना जाता है कि वेदों की जितनी शाखाएं थी उतने ही उनके ब्राह्मण आरण्यक और सूत्र ग्रंथ आदि थे। इस प्रकार ब्राह्मणों की संख्या 1,000 से भी अधिक या 1,130 होनी चाहिए, पर वर्तमान समय में केवल 18 ब्राह्मण ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के केवल 2 ब्राह्मण इस समय मिलते हैं, साकल शाखा का ऐत्रेय ब्राह्मण और बास्कल शाखा का कौपीतकी ब्राह्मण, जिसे शांखायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 पंचक हैं, जिनमें से प्रत्येक में 5-5 अध्याय हैं। इस प्रकार इस ब्राह्मण के अंतर्गत अध्यायों की कुल संख्या 40 है। अध्याय कंडिकाओं में विभक्त है, जो संख्या में 285 है। ऐत्रेय ब्राह्मण के कर्ता या प्रवक्ता महिदास थे, जिनकी माता का नाम इत्रा था। संभवतः वह एक दासी थी जो किसी राजश्री के घर में रहा करती थी। इत्रा का पुत्र होने के कारण महिदास ऐत्रेय कहलाया और उस द्वारा विरचित ब्राह्मण भी ऐत्रेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। महिदास के दासी पुत्र होने की कथा सायनाचार्य ने ऐत्रेय ब्राह्मण के भाष्य की भूमिका में उल्लेखित की है। महिदास चाहे दासी पुत्र क्यों न हो, पर इसमें संदेह नहीं कि वह वेदों का धुरंधर विद्वान था और उस द्वारा विरचित ऐत्रेय ब्राह्मण में याज्ञिक कर्मकांड का बड़े विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है। ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से इस ब्राह्मण का विशेष महत्व है। उसके अंतिम 3 अध्यायों के अनुशीलन से तत्कालीन भारत की भौगोलिक दशा, विविध राज्यों की सत्ता तथा उनकी शासन पद्धति और अनेक राजवंशों तथा राजाओं का जिस ढंग से प्रामाणिक परिचय मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इस ब्राह्मण की सप्तम पंचिका में राजा हरिश्चंद का जो आख्यान दिया गया है वह पुराणों की कथा से भिन्न है। ऐत्रेय ब्राह्मण की इस आख्यान का आधार ऋग्वेद के प्रथम मंडल के वे सूक्त हैं जिनका ऋषि सुन सेप है। इस आख्यान के सम्मुख रख कर कतिपय विद्वानों ने नरमेघ यज्ञ या यज्ञ में मनुष्य की बलि देने की बात प्रतिपादित की है, पर इस आख्यान का वास्तविक अभिप्राय क्या है, इस पर वैदिक युग के धर्म तथा याज्ञिक कर्मकांड के विषय का विवेचन करते हुए प्रकाश डाला जाएगा। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है कि वैदिक युग के धार्मिक जीवन, भौगोलिक दशा तथा इतिहास को जानने के लिए इस ब्राह्मण का बहुत उपयोग हुआ है। इससे उपलब्ध सामग्री का हम यथासाध स्थान प्रयोग करेंगे। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण कौशितकी या सांख्यायन है। इसमें 30 अध्याय हैं जो खंडों में विभक्त हैं। खंडों की कुल संख्या 226 है। ऐत्रेय ब्राह्मण के समान इस ब्राह्मण में भी प्राधानतया याज्ञिक कर्मकांड का निरूपण किया गया है और अपने समय की धार्मिक दशा के परिज्ञान के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। यजुर्वेद के ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण वर्तमान समय में उपलब्ध है, जिसे शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं कान्व और माध्य निंदनीय के साथ इस ब्राह्मण का संबंध है। माध्य निंदनीय शाखा के शतपद ब्राह्मण में 14 कांड हैं, जो अनेक अध्यायों में विभक्त हैं। अध्याय के अन्य विभाग ब्राह्मण और कंडिका है। माध्य निंदनीय शाखा के शतपद में 14 कांड, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण और 7,624 कंडिकाएं हैं। इसके विपरीत कान्व शाखा के शतपथ में 17 कांडों, 104 अध्यायों, 435 ब्राह्मणों और 6,806 कंडिकाओं की सत्ता है। इस प्रकार इन दो शाखाओं के शतपथ ब्राह्मणों में कतिपय भेद भी है, यद्यपि उनके प्रतिपाद विषय में प्रायः सादृश्य एवं एक है। वस्तुतः इन शाखाओं के ब्राह्मणों में जो भेद है वह विभाग के क्रम में के संबंध में अधिक है, तात्विक रूप में उनके अधिक अंतर नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ का सबसे अधिक महत्व है। वैदिक संहिताओं में जैसे ऋग्वेद सबसे अधिक विशाल व महत्व का है, वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथों से आकार तथा प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से शतपथ को सर्वाधिक महत्व का माना जाता है। यागिक कर्म कांड का जितने विशद रूप से प्रतिपादन इस ब्राह्मण में किया गया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से भी शतपथ ब्राह्मण पर भी आधारित है। शतपथ ब्राह्मण अद्वितीय है। पौराणिक साहित्य के अनेक कथानक और आख्यान शतपथ ब्राह्मण पर भी आधारित है। जल प्लावन, प्रलय और मत्स्य अवतार द्वारा मनु की रक्षा किए जाने की जो कथा इस ब्राह्मण में दी गई है उसमें एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक तथ्य की स्मृति सुरक्षित है। भारत में आर्य जाति का प्रसार किस प्रकार हुआ इस संबंध में माथव विधेद तथा उसके पुरोहित गौतम राहुगण के आख्यान से उत्तम प्रकाश पड़ता है। राजा दुष्यंत और भरत की कथा जिस ढंग से शतपथ में दी गई है ऐतिहासिक दृष्टि से उसका भी बहुत महत्व है। महाभारत की अनेक कथाएं भी सूत्र रूप से इस ब्राह्मण में विद्यमान है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रीय ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण के समान इसका आकार भी विशाल है। इसमें 3 कांड हैं, जिसमें से पहले और दूसरे कांडों में 8-8 अध्याय प्रपाठक हैं और तीसरे कांड के अध्यायों की संख्या 12 है। अध्यायों के उपविभाग अनुवाक कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 308 है। तैत्रीय ब्राह्मण में भी गवामयन, बाजपेय, राजसूय, आगे राजसूय आदि यज्ञों की विधि एवं कर्मकांड का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद के एक अन्य ब्राह्मण के भी कुछ अंश गत वर्षों में उपलब्ध हुए हैं। यह ब्राह्मण कान्व शाखा का है।